इन पिछले अध्याय में आपने देखा कि ज़ोया और अयान शादी करने पर सहमत हुए। इस अध्याय में ऑफिस में एक मीटिंग होती है जिसमें एक नया प्रोजेक्ट डिस्कस होता है। मीटिंग के बाद अनन्या, जगत और शिव मेहता आर्यन के घर डिनर पर जाने का फैसला करते हैं ताकि वे सानवी से मिल सकें, जो उनके बेटे जय के लिए खाना बनाती है। आर्यन को सानवी के नौकरी छोड़ने पर अफसोस है और वो ये नहीं बताता कि उसने क्यों काम छोड़ा। कृति अपनी बहन सानवी के नौकरी छोड़ने पर गुस्सा होती है। सानवी इंद्र के साथ डॉग सेंटर जाने का फैसला करती है। इंद्र सानवी से मिलने के लिए उत्साहित है और मीटिंग के लिए साइन करने से इनकार कर देता है। आर्यन सानवी के बारे में सोचता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। वो लड़की अलग है। उसने सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर लीं। शायद मैंने बहुत जल्दी कर ली उसे जज करने में। शायद वो वैसी नहीं है जैसी मैंने मान लिया। कुर्सी पर बैठा आर्यन अचानक महसूस करने लगा कि उसकी सोच में एक खिंचाव है, कुछ ऐसा जो उसे बार बार सानवी की ओर खींच रहा था। उसने फ़ोन उठाया और देव को फ़ोन किया। मैंने आपके टेक्स्ट को सही व्याकरण और प्रवाह के साथ साफ और पढ़ने में सहज रूप में लिखा है। उसने फ़ोन उठाया और देव को कॉल किया। मुझे सानवी का फ़ोन नंबर चाहिए। देव ने थोड़ी ही देर में जवाब दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी भेज देता हूँ। कुछ ही पलों बाद देव ने सानवी का नंबर व्हाट्सएप पर भेज दिया। आर्यन राजवंश ने सानवी का नंबर अपने फ़ोन में सेव किया और व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा। मैं रात के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सानवी ने फ़ोन देखा और गुस्से से बोली, अब ये मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? रिया ने पास खड़ी होकर पूछा, किसका मैसेज है? सानवी ने घूरते हुए कहा, आर्यन का है और उसने सॉरी कहा है। रिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, ओके लिखकर एक छोटा सा मैसेज कर दो। सानवी ने फ़ोन उठाया और लिखा, ओके। रिया ने पूछा, क्या लिखा तुमने? सानवी ने बस कहा, ओके। मतलब जो समझना है वो समझे, किसी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ी देर बाद सानवी ने अपने मन में सोचा, चलो मैं चेंज कर लेती हूँ, इंद्र के साथ जाना है, और उसने ये फैसला कर लिया। सानवी जब इंद्र की गाड़ी में बैठी तो पूरे रास्ते चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। शहर की सड़कों पर हल्की शाम उतर रही थी। इंद्र ने उसे कई बार देखने की कोशिश की मगर उसने नजरें नहीं मिलाईं। गाड़ी जैसे ही डॉग सेंटर के बाहर रुकी, वहां से मासूम कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। सानवी का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उदासी की जगह एक चमक ने ले ली हो। वो जल्दी से अंदर भागी और वहां पिंजरों में बैठे डॉग्स को देखने लगी। जैसे ही उसने एक छोटे पपी को अपनी गोद में लिया, उसकी आंखों में मुस्कान लौट आई। इंद्र उसे देख रहा था। इंद्र ने देखा कि सानवी डॉग्स के साथ खेल रही है। पपियों को गोद में उठाकर वो उन्हें प्यार से देख रही थी। उन्हें खाना खिलाते हुए उसकी आंखों में चमक थी। इंद्र का मन खुश हो गया। उसे अच्छा लग रहा था कि सानवी उसके साथ वो पहली बार इस तरह बाहर आई थी। डॉग शेल्टर भी उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वो आसपास के माहौल को देखकर मुस्कुराया। साफ था कि सानवी को ये जगह और ये पल बहुत भा रहे थे। उसकी मासूमियत और खुशी इंद्र के दिल को छू गई। इंद्र ने खुद को रोकते हुए महसूस किया कि आज की शाम कुछ खास है। सानवी के साथ बिताया ये पल उसे बहुत याद रहेगा। सीन, फूड स्टॉल पर, जयपुर। डॉग शेल्टर से बाहर आते ही इंद्र और सानवी धीरे धीरे पार्किंग की ओर बढ़ रहे थे। गाड़ी वहीं खड़ी थी मगर चलते हुए उनकी नज़रें आसपास के स्ट्रीट फूड स्टॉल पर टिकी। सानवी की नज़र एक स्टॉल पर गई जहां ताज़ा तंदूरी चिकन टिक्का, मसालेदार पनीर टिक्का और मिर्च मसाले वाला आलू चाट तैयार हो रहा था। उसका मुंह पानी पानी हो गया। बहुत भूख लगी है, आओ हम खाते हैं, साध्वी ने इंद्र से कहा। वो दोनों उस स्टॉल पर चले जाते हैं। इसे थोड़ा ज्यादा स्पाइसी बना देना, सानवी ने स्टॉल के मालिक से कहा। उसकी आवाज़ में हल्की उत्सुकता और मुस्कान थी। इंद्र हंसा। उसके लिए ऐसे सड़क पर खाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था मगर वो सानवी के साथ वक्त बिताकर बहुत खुश था। स्टॉल के सामने ही एक छोटा सा टेबल खाली था। दोनों वहीं बैठ गए। सानवी अपने खाने में इतनी मस्त थी कि इंद्र को सिर्फ उसका ध्यान खींच रहा था। वो पनीर टिक्का के टुकड़े उठाकर मसालेदार चटनी में डुबो रही थी और हल्की हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। इंद्र ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी और मासूमियत का संगम था। वो खुद भी खुश था पर ये पल इतना शांत और खास लग रहा था कि बस दोनों के चारों ओर की दुनिया धुंधली सी हो गई। सानवी ने इंद्र की ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, तुम भी थोड़ा ट्राई कर लो, मसालेदार है। इंद्र ने पनीर टिक्का उठाया और हल्का सा मसाला चखते ही हंसा, वाह सच में स्पाइसी है, पर तुम्हारे साथ खाने में मज़ा और भी बढ़ गया। दोनों ने मिलकर खाना खाया, बातें की और हल्की हल्की हंसी में खो गए। उस शाम की हल्की हवा, मसाले की खुशबू और उनकी मुस्कानें सब कुछ मिलकर इसे एक यादगार पल बना रहे थे। शाम का समय हो चुका था। सारा ज़ोया के पास आई और बोली, चलो हम लोग किला देखना चलते हैं,
चाची जान, अम्मी जान सभी भी तैयार हैं हमारे साथ जाने के लिए। जारा और फिजा भी जा रही हैं। जोया ने ये सुना तो खड़ी हो गई। ऐसा नहीं था कि उसे कहीं घूमने जाने का मन था। उसके अंदर हल्का डर था कि कहीं आर्यन उससे मिलने कमरे में ना आ जाए। इसीलिए उसने सोचा कि होटल से बाहर निकलना ही सही रहेगा। वो उसी सुबह पहने हुए कपड़ों में थी, कोई बदलाव नहीं किया, बस वैसे ही उठकर वो उनके साथ चल पड़ी। सीन: जयपुर का किला, शाम का वक्त। सारा, जोया, फिजा और जारा अपनी अम्मी और चाची जान के साथ किला देखने आई थी। सब लोग अंदर चले गए थे, मगर सारा अचानक रुक गई। उसे याद आया कि वो अपना कैमरा गाड़ी में ही भूल आई है। धीरे धीरे कदमों से वो पार्किंग की तरफ आई। चारों तरफ सुनसान सा माहौल था, हल्की सी हवा चल रही थी। गाड़ी तक पहुंचकर उसने कैमरा उठाया ही था कि अचानक एक तेज एसयूवी उसके पास आकर रुकी। ब्रेक की आवाज गूंजी और धूल हवा में फैल गई। सारा चौंक गई। उसी पल एक लंबा चौड़ा नौजवान बाहर निकला। ऊंची कदकाठी, गहरी आंखें, सलीके से सजी दाढ़ी, सफेद कुर्ता पायजामा और गले में परना लटकाए हुए। उसके चेहरे पर रौब था, जैसे जहाज ही उतरा हो आसमान से। सारा ने गुस्से से कहा, आपको गाड़ी चलाना आता भी है या बस लोगों को मारने का शौक है? ऐसे टक्कर मारते हैं किसी को? वो लड़का हंसा नहीं बल्कि सीधे अकड़ के साथ बोला, ओ कुड़िए, जरा संभल के गलना कर। जहाजाना लुड़ंदा शौक है ते लोगानु टकराना दा नहीं। सारा ने और गुस्से से कहा, अगर किसी को सचमुच चोट लग जाती तो आप समझते क्या हो अपने आप को? इमरान शाह ने ठंडी निगाह डाली और हल्की पंजाबी में बोला, मैं समझता अपने आप नू शेर। बाकी दी दुनिया जदों भी मेरे सामने आउंदिया अक्सर डर जांदिया। तू पहली कुड़िया जेड़ी मेरी गल्ला नू जवाब दे रही है। सारा हैरान भी थी और नाराज भी। उसने कैमरा कसकर पकड़ा और बिना जवाब दिए पलट गई, मगर उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी गुस्से की वजह से। दूसरी तरफ इमरान शाह की आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी। दिलचस्प कुड़िए, जयपुर दा सफर शायद होर भी यादगार होएगा। सूरज अपने सुनहरे रंग में धीरे धीरे ढल रहा था और जयपुर के किले की विशाल छत पर हल्की हवा चल रही थी। सारा, जोया, फिजा और जारा जी एक साथ खड़े थे, किले के लाल पीले बलुआ पत्थरों से बनी ऊंची दीवारों और बुर्जों की भव्यता को निहारते हुए। नीचे शहर के घर और गलियां छोटे छोटे रंगीन खिलौनों जैसे दिख रहे थे। सारा अपनी आंखों में उत्साह और रोमांच लिए छत के किनारे खड़ी थी। जारा और फिजा हंसी मजाक करते हुए दीवारों पर बने झरोखों और गुंबदों की नक्काशी की ओर इशारा कर रहे थे। जोया दूर शहर की सुंदरता में खोई हुई थी।
इतने में अचानक किले की विशाल दहलीज से कदमों की आवाज गूंजी। एक झटके की तरह सभी ने मुड़कर देखा। इमरान और कुछ नौजवान किले की ओर गढ़ते हुए सामने आ गए। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और हल्की घमंड की झलक थी जो कभी कभी दूसरों की हठधर्मी को झकझोर देता था। सारा ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में तुरंत गुस्सा और चौंक का मिश्रण उमड़ आया। सारा का चेहरा लाल हो गया, जैसे किसी ने उसके सामने उसकी शांति भंग कर दी हो। किले की छत पर खड़ी ये चारों की छोटी सी दुनिया लाल पीले पत्थरों और दूर शहर के दृश्य के बीच अचानक तनाव और उथल पुथल से भर गई थी। हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन चारों के मन में हलचल तेज थी। कौन है इमरान शाह जो सारा से टकराया है? जोया अयान से पीछा छुड़ाने के लिए किला देखने आई है। क्या इतना आसान होगा अयान से पीछा छुड़ाना?